Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Paramashadhyaya Pratasmaraniya प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज तथा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परमादरणीय परम श्रद्धेय महाराज श्री दोनों महापुरुषों के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए अध्यात्म की साधना में अनवरत रत भगवान के परम भक्तगण श्रोताजन साधकजन कठोपनिषद के अंतर्गत आप लोग नचिकेता के आख्यायिका का श्रवण कर रहे हैं। नचिकेता की आख्यायिका अत्यंत प्रेरणास्पद है। नचिकेता बड़ी ही उच्च कोटि की बात आपके सामने रखते हुए कहते हैं। ये सारी जो दुनिया और दुनिया के पदार्थ हैं परिवर्तनशील नश्वर हैं और इन नश्वर परिवर्तनशील पदार्थों के लिए हम अपनी नैतिकता सत्य का त्याग करें ये उचित बात नहीं है। किसके लिए हम अपनी नैतिकता खो दें? इन्हीं नश्वर पदार्थों के लिए ना। इसलिए बालक नचिकेता अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए आचार्य यम के द्वार पर विराजित हैं और तीन दिन तक वे बिना खाए पिए बिना किसी चीजों का उपयोग किए केवल बैठे रहे और यहां तक कि वे मन से भी कुछ सोच नहीं रहे थे, क्योंकि मन का सोचना भी तो मन का उपयोग करना है। वहां कोई संकल्प भी नहीं है। आप स्वामी के हो गए, अब आपको स्वामी के अलग कुछ सोचने का भी अधिकार नहीं है। हनुमान जी सेवक हैं, राम के अलावा कुछ सोचते भी नहीं हैं। आज बालक नचिकेता आचार्य यम के हो चुके हैं, वहां अलग सोचने की भी कोई बात नहीं है, केवल उनके समर्पण में है। और जब यम आए उन्होंने देखा छोटा सा बालक कुमार अवस्था में पृथ्वी लोक से आया हुआ और बिना खाए पिए यहां विराजित हैं, अपने सबके सब लोगों को उन्होंने बुला लिया, पत्नी को, परिवार के सदस्यगण, मंत्रीगण, और उनके सामने आतिथ्य सत्कार की बात रखी। और आतिथ्य के अपमान और अपमान का दुष्परिणाम इसकी भी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण अतिथि आपके द्वार पर आया हुआ है और वो साक्षात अग्नि है, वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् कस्यैतं शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। ब्राह्मण अतिथि अग्नि स्वरूप साक्षात परमात्मा का रूप हमारे द्वार पर आया हुआ है और वो भूखा प्यासा है और ये कुपित होकर हमारे यमलोक को ध्वस्त कर दे, जला दे उसके पहले ही। इनकी सेवा करके इनको शांत करना बहुत आवश्यक है। ये वैश्वानर जो है ना, ये भगवान का विरूप, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते कि मैं वैश्वानर अग्नि हूं और खाए पिए पदार्थों को मैं पचा लेता हूं। ये भगवान का रूप है वैश्वानर अग्नि। और ब्राह्मण और उसमें भी अतिथि साक्षात भगवान का रूप, और उसी समय उन्होंने उनका चरण धोया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया। और अब आचार्य यम अपने सभी मंत्रीगण, अपने परिवार के सदस्यगण उनको शिक्षा दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, आशा संगतम सुनृताम च इष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान एतद् वृंगते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणे गृहे। आप अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, आपके घर में बिना खाए पिए कोई ब्राह्मण अतिथि, साधु अतिथि, कोई भी अतिथि रह जाए तो क्या होता है, दुष्परिणाम नुकसान, ये यहां गिना रहे हैं। आशा संगतम सुनृताम च, भगवान भाष्यकार कहते हैं आशा का मतलब वो है, आप जिन बाह्य पदार्थों की इच्छा करते हैं ना पाने की, उसको आशा बोलते हैं। आशा माने इच्छा है, और वो इच्छा आपकी यह लोक से लेकर परलोक तक, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक आशा, अच्छा इच्छा है। आप मकान बनाना चाहते हैं, ये आशा है। आप कोई चीज वस्तु चाहते हैं, कोई व्यक्ति चाहते हैं, ये भी आपकी आशा है। आप स्वधर्म का पालन करना चाहते हैं, ये भी आशा है। आप यज्ञ करना चाहते हैं, ये भी आशा है। आप भगवान को पाना चाहते हैं, ये भी आशा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये भी तो आशा ही तो है, इच्छा ही तो है। तो यहां पर आचार्य यम कहते हैं कि आप यदि अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, अतिथि धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो आशा विंगते, हाँ, आपकी आशा जो है ना वो निराशा में बदल जाती है। आपकी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्त नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं होती हैं। आप जो भी इच्छा करते हैं ना वो निराशा में बदल जाती है, आपके हाथ में फल नहीं लगता है, क्योंकि आपने एक अतिथि की आशा को पूर्ण नहीं किया है। अतिथि की आशा क्या थी? अतिथि की आशा यही थी कि जब यहां पहुंचेंगे तो सत्कार होगा। और सत्कार क्या है? अतिथि आपसे क्या, दो चीजें, तीन चीजें चाहता है अतिथि। पहली चीज, आप उसको रहने को दे। पुराने जमाने में धर्मशालाएं बनाते थे लोग, और अपने घर में भी रख लेते थे। अभी मैं उत्तर प्रदेश बलिया, भागवती कथा थी, वहां गया तो एक गजब की चीज मैंने देखी। मैंने पढ़ता था घर द्वार, ऐसे सुना है ना अपने घर द्वार, तो गिरिजी घर तो ठीक है, द्वार क्या है? आप घरदार सुनते हैं ना, घरदार, तो घर तो ठीक है, ये द्वार क्या है? तो द्वार का मतलब दरवाजा थोड़ी है वहां। तो इस समय जब मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कि द्वार क्या चीज है। वह जितने लोगों के घर है ना, उनका एक द्वार भी होता है, द्वार। और ये द्वारा जो बना है ना गुरुद्वारा, वो उसी से बना हुआ है द्वार। घर का मतलब होता है जहां आपके परिवार के सदस्यगण रहते हैं। पति पत्नी भाई माता पिता बाल बच्चे जो भी आपके अंतरंग फैमिली के सदस्य हैं वो सारे घर में रहते हैं। और द्वार का मतलब होता है बाहर का अतिथि आया, आपके बाहर के कोई रिश्तेदार आए, पुरुष मंडल, महिलाएं तो घर में रहेगी और जो पुरुष लोग हैं वो आपके द्वार में रहेंगे। द्वार माने जहां अतिथि लोग निवास करते हैं, आगंतुक जो रहते हैं उसको द्वार बोलते हैं। हर घर के साथ एक द्वार थोड़ा दूर होगा, लेकिन थोड़ा सा दूर होगा। अतिथि आपके पास आएगा तो सबसे पहली उसकी आकांक्षा क्या, उसकी पहली आकांक्षा हमको थोड़ा रहने को जगह मिल जाए। पुराने जमाने में लंबी यात्राएं हुआ करती थी, वाहन नहीं थे और रात्रि के समय निवास स्थान की बहुत आवश्यकता थी। बारिश से, गर्मी से, जाड़े से, हिंसक जीव जंतुओं से रक्षा करने के लिए जगह की जरूरत थी। और वो इस आशा से आया था कि आप थोड़ी जगह दे देंगे, और आपने उसको जगह नहीं दिया, उसकी आशा पूरी नहीं की। तो आचार्य यम कहते फिर आपकी आशा कैसे पूरी होगी। साक्षात परमात्मा और उसको आतिथ्य देकर, घर निवास देकर सेवा करने का अवसर मिला था। आप अतिथि को द्वार बनाकर भगवान की पूजा अर्चना कर सकते थे, नहीं किए, इसलिए कहते आशा वृंगते। और उनकी इच्छा क्या थी, दूसरी रहने का निवास और थोड़ा अन्न भोजन। पुराने जमाने में लंबी यात्रा में कौन आदमी सारा खाना पीना कोई ले जाता, जिसके घर जाते वहीं उनको भोजन लोग पूछते, कहां से आए, आइए वृंदावन से आए, आओ खाओ पियो रहो। ये दूसरी अन्न थी। और तीसरी जो चीज थी वो मार्गदर्शन करना था। अतिथि अब दूसरे गांव जाएगा, अगली यात्रा में निकल पड़ेगा, तो आपको मार्ग भी तो बताना है उसको, अगला मार्ग आपको ही बताना है, सुव्यवस्थित मार्ग बताना। ये तीन चीजें अतिथि को चाहिए थी, निवास भोजन और मार्गदर्शन। ये तीन चीजें अतिथि को आप नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिए हैं, तो आचार्य हम कहते हैं एतत् वृंगते, आपकी आशा जो है ना वो निराशा में बदल जाती है। यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणे गृह। और संगतम सुनृताम च, ये नृत है ना, सुनृत माने फल होता है। ये हमारे जीवन में तीनों क्रम है। ये जो श्लोक है ना, ये ऊपर ऊपर से टाल के आगे बढ़ने का नहीं है, बहुत गहराई से सोचने का श्लोक है। आशा प्रतीक से सुनृताम च, यहां सुनृत का अर्थ है फल। हमारे जीवन में पहली आशा है और उस आशा का फल, सुनृत माने फल। और प्रतीक्षा और आशा में अंतर है। आशा का मतलब है आप चाहते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान अवस्था परिस्थितियां आदि, वो आशा है। और प्रतीक्षा का अर्थ है वो निश्चित है। आशा में वस्तु सत्ता का वास्तविक स्वरूप, उसका देश, उसका काल, मिलने के मापदंड, इसका कुछ भी पता नहीं होता है। वो कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसकी कोई कल्पना आपके मन में नहीं होगी। चाहते हैं और प्रतीक्षा जो होती है ना, वो चीज फिर मिलने की। जैसे आपको उदाहरण में समझा देते हैं, आप धन चाहते हैं, आप दुकान खोल रहे हैं, आप धन चाह रहे हैं कि आज हमको मिले 1 लाख 10 लाख रुपए, आज फायदा हो, ये आपकी आशा है। और आप बैंक गए हैं और लाइन में खड़े हैं, और आपके चेक में आपने 10 लाख रुपया डाला है, लाइन में खड़े हैं, आपको 1-2 घंटे के बाद मिलेंगे, अभी आशा है कि प्रतीक्षा है? ये आशा नहीं है, ये क्या है, प्रतीक्षा है। आपको कोई बोले भैया कितना मिलने वाले हैं, बोले 10 लाख, तो आशा है कि प्रतीक्षा है? अरे भैया हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, अब निश्चित है, अब ये आशा नहीं है, अब ये प्रतीक्षा है। एक बड़ा सुंदर प्रकरण है भागवत में। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने बड़े सुंदर एक शब्द का प्रयोग किया, सुसमीक्षताम। ऐसा उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपकी कृपा की समीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं। वहां और गहरी बात बोली और एक कोटि की बात और बोली। आप भगवान की प्रतीक्षा करते हैं कि समीक्षा करते हैं? हम लोग तो प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा में और समीक्षा में भी अंतर है। जैसे इस समय आप बारिश की क्या कर रहे हैं, गर्मी है, गर्मी। आप गर्मी के दिन में बिल्कुल आप बादल छा रहे हैं, काले काले, और थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी सा लग रहा है, हवाएं थोड़ी ठंडी ठंडी बहने लगी, तो उस समय आप क्या करते, प्रतीक्षा। ओ, अब तो बारिश तो होगी, बादलों ने भी अपने रंग को बदलना शुरू कर दिया है, हवाएं भी चलने लगी ठंडी ठंडी, और आप उस समय बिल्कुल आप अनुभव करते हैं अब बारिश होने वाली है, प्रतीक्षा है, अब निश्चित है। लेकिन जब बारिश होने लगती है और ठंडी ठंडी फुहार आप तक पहुंचने लगती है, जल भी आप तक पहुंचने लगता है, आप आंखों से देख रहे हैं झरझर बारिश हो रही है, तो उस समय आपकी प्रतीक्षा है कि समीक्षा है? आप ये प्रतीक्षा नहीं, ये वो समीक्षा है, माने आप अनुभव कर रहे हैं। अब आप समीक्षा करते हैं, ओ बहुत जबरदस्त बारिश है, बहुत जबरदस्त, उसके बूंदों का आप अनुभव करते हैं, मोटे मोटे बूंद है, टप टप पड़ रहे हैं, एक ही बूंद आपके सिर पर गिरी तो सिरा पूरा शरीर भींग आते हैं, ओहो हो क्या बारिश है। ये आपकी प्रतीक्षा नहीं, ये आपकी समीक्षा है। समीक्षा में वस्तु आपको प्राप्त हो चुकी होती है और प्राप्त वस्तु का आप मूल्यांकन करने लगते हैं, और प्रतीक्षा में वस्तु प्राप्त होना निश्चित है लेकिन अभी आपने उसको प्राप्त नहीं किया है। अब यहां भी आप सेम उस प्रकरण को आप यहां जोड़ दीजिए। यम कहते हैं कि आशास प्रतीक्षे, ये प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा माने बिल्कुल निश्चित है, अब हाथ में आई आई चीज है, आने वाली है, और वो सर्व पदार्थों के बारे में, दुनिया के पदार्थों के बारे में अथवा आध्यात्मिक वस्तु के बारे में भी। अब आप यज्ञ करने वाले हैं, अब आप संध्या वंदन करने वाले हैं, अब आप बस मोक्ष को पाने वाले हैं, ये सारी चीजें प्रतीक्षा में है। एक महात्मा की जीवनी में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 21 दिन का व्रत था उनका, और उस 21 दिन के व्रत में ऐसा भाव था बस बिल्कुल अब मोक्ष के निकट है, और 3 दिन पहले शरीर छूट गया उनका, और वो 3 दिन पहले छूटा पुनर्जन्म हुआ, ज्ञान नहीं हो पाया, और दूसरा जन्म उन्होंने लिया और फिर ज्ञान हुआ। ये आचार्य यम कह रहे हैं यही प्रतिबंध है। प्रतीक्षा में आपका प्रतिबंध उपस्थित हो गया, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, कहीं अतिथि का अनादर, साधु का अनादर, या अपने से बड़े माता पिता, अपने से श्रेष्ठ जनों का अनादर किया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, और फिर वो प्रतीक्षा विंगते। आपकी जो प्रतीक्षा है, आपको जो वस्तु मिलने वाली है, वो मिलते मिलते रह जाती है, ऐसा बस मिलते 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 रह जाती है, ये कहीं ना कहीं हमने अपराध किया है। आशा प्रतीक्षे विंगते, और तीसरा है संगतम, और संगतम माने फल। संगतम शब्द का अर्थ होता है फल। आप आशा कर रहे हैं, उसके बाद आ गया आपके जीवन प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा के बाद समीक्षा, तीसरा नंबर आप प्रतीक्षा के बाद समीक्षा लेना या फल लेने की बात है। एक बड़ा मजबूत उदाहरण इस प्रकरण को सार्वजनीन समझने के लिए, आप शबरी के जीवन को देखना। शबरी जब सर्वप्रथम अपने गुरु के पास गई, मतंग ऋषि के पास, तो ऐसे तो नहीं गई होगी ना। आज उन्होंने घरदार छोड़ के गुरु के पास जाकर सेवा का व्रत लिया, तो उनके मन में था कि मैं परमात्मा को पालूं, एक किसी ने मुझे सुनाया, कोई ब्रह्मचारी अपने आश्रम में रहते थे, महाराष्ट्र में कोई माता जी हैं और ये बड़ी सिद्ध माता है, जनाबई नाम है उनका। तो मैंने पूछा तुम मिले थे क्या? हाँ बोले मैं मिला था उनको, 15 दिन रहा। और बोले कि मैंने देखा कि एक सांप आया तो उसके तरफ बढ़ रहा था, हम तो उठ के भागे और वो उसको बैठे बैठे लकड़ी से उसको अपने से दूर कर रही थी और बोल रही भाग भाग भाई यहां क्या करने के लिए आया। हाँ वो भाग नहीं रही थी, वो लकड़ी से उसको हटा रही थी और बड़ा सांप था। और वो सांप बोले उसको भय नहीं इतना, मतलब उच्च कोटि की माता। मैंने कहा चलो फिर मैं भी मिलने आता हूं। जब मैं वहां गया तो बड़ी प्रसन्न हुई, उन्होंने अपनी जीवन की घटना सुनाई। देखो आज भी कितनी उच्च कोटि के लोग हैं और अपने धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, धर्म आपका किसी वर्ण जाति प्रांत लिंग आदि से बंधा हुआ नहीं है। आपके हिंदू धर्म में छोटे बच्चे भी बहुत महान हुए हैं। कहां ध्रुव और प्रह्लाद 5 साल के बच्चे, दुनिया में ऐसा कोई इतिहास है क्या? दुनिया के इतिहास में, दुनिया के धर्म ग्रंथों में कहीं आपने ऐसे बालकों की कहानी पढ़ी जो 5 वर्ष का बालक हो और वो तपस्या करने के लिए निकल पड़ा हो? ध्रुव प्रह्लाद नारद क्या अद्भुत बालक है। आपने ऐसे लोगों को भी नहीं सुना होगा कि 80 साल का वृद्ध हुआ और छड़ी लेके निकल पड़ा तपस्या करने के लिए। ये संन्यास धर्म क्या था ये भाई? 80 साल 75 का 25-25 गिन लेना, 3 हो गए ना वानप्रस्थ तक, और आप 80 साल के हैं और छड़ी लेके निकल पड़े क्या करने के लिए? आपके धृतराष्ट्र क्या है? चतुर्थ अवस्था में तो निकल पड़े और तपस्या करने के लिए जहां कोई सुविधा नहीं। आप कल वो भगवत गीता श्रवण कर रहे थे ना विनोबा भावे जी की, उन्होंने सुनाया कि वो जर्मन गए थे और वहां इंटरव्यू लिया जर्मन रेडियो ने और दूसरे दिन एक चीज ब्रॉडकास्ट की कि वो क्या थी। बोले ये लोग सुबह 4 बजे उठते हैं और कॉफी और चाय नहीं पीते हैं। उन जर्मनी लोगों को लगा कि वो क्या, कितनी त्याग की बात है, क्यों कि चाय और कॉफी नहीं पीना उनके लिए बहुत बड़ी त्याग की बात, जिसके बिना जो नहीं रह सकते वो वाह वाह बोले चाय कॉफी नहीं पीते उनके तो अद्भुत चीज। और वो लोग सो जगने वाले 9-10 बजे, बोले 4 बजे जगते हैं, अद्भुत त्याग की बात। जो चीज आपके लिए संभव नहीं जब दूसरा करता है वो बहुत बड़ी मालूम पड़ती है, बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। तो नारायण कितनी अद्भुत चीज है, 80 साल का वृद्ध और वो परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा और वहां कोई सुविधा नहीं है, वहां गद्दे नहीं तकिया नहीं और पानी भी तैयार नहीं है कि आप नौकर को बोलो पानी और पानी आ जाए, वहां तो झरनों से भरना पड़ेगा। उस बुढ़ापे की अवस्था में पैर फिसल जाए राम राम, पहाड़ उतरना चढ़ना सारी चीजें, वहां नौकर चाकर थोड़ी होती संन्यास में। आप स्त्रियों को देखना यहां अद्भुत, और ये बड़ी बड़ी महान साध्वियां हुई हैं गार्गी। दुनिया में ऐसा आपको मिलेगा कि कोई माता बैठी है मंच पर लाखों लोगों को ज्ञान का उपदेश कर रही है? क्यों गिरी जी, है ना अद्भुत बात। आपको दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कोई बालिका बैठी है मंच पर, लाखों लोग बैठे नीचे बूढ़े बूढ़े, और ये बालिका अभी 16 साल की है और ज्ञान का उपदेश कर रही है। और पुरुष तो है ही ब्रह्मज्ञानी इसमें कोई लेकिन यहां आपको हर तरीके का आदमी मिलेगा, हर वर्ण हर गोत्र हर प्रांत हर लिंग, छोटा बड़ा हर जगह पर आपको। परम पूज्य महाराज श्री ने कहीं लिखा है कि उनकी लिस्ट में एक ब्रह्मज्ञानी थे बड़े अद्भुत, महाराज विचरण करते करते गए तो एक ब्रह्मज्ञानी मिले गंगा के किनारे, गुफा में रहते थे। तो महाराज श्री ने पूछा कि आप गुफा में रहते हैं गंगा के किनारे, आप यहां खाते क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी से भिक्षा लेता हूं। तो महाराज को लगा गंगा जी से भिक्षा लेते हैं तो गंगा जी प्रकट होकर देती होगी। नर्मदा जी से भिक्षा लेने का अर्थ है नर्मदा जी प्रकट हो गया आपको भिक्षा दे। तो महाराज ने पूछा कि क्या नर्मदा गंगा साक्षात प्रकट होकर भिक्षा देती है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं एक मछली पकड़ लेता हूं और मछली खा लेता हूं, भजन करता हूं। महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ, बोले तो बड़ा गड़बड़ है, मछली पकड़ के खाते हैं, ऐसा गलत अर्थ मत लीजिएगा आप। हाँ, आदमी जब सुनता है ना तो अपने मतलब की बात निकाल लेता है, कहीं ऐसा ना सोचे कि उन्होंने कहा कि मैं मछली खाता हूं, ब्रह्मज्ञानी। उन्होंने कहा भैया मैं मछुआरा ही हूं, मैं मेरी जाति मछुआरा है। और बोले मुझे ज्ञान हो गया पूर्व जन्म का संस्कार, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, मुझे ज्ञान हो गया। और बोले जैसे मेरा उस समय भी मछली खाता था, बोले अभी भी मैं मछली खाता हूं, लेकिन आप इसका अर्थ ये मत लेना कि मछली खाने से ज्ञान होता है। ये खाने जाने से ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, देश काल आपका स्वभाव आपका स्वधर्म आदि के हिसाब से आपका रहन सहन बनता है। तो कहां मछुआरा और कहां ब्रह्म ज्ञान, लेकिन यहां पर निषाद को भी ज्ञान, यहां जाति से कोई बंधा हुआ ज्ञान थोड़ी है। भगवान भी कहते हैं ना, अपि चेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरीव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो वहां शरण में आना महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं, वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है, वहां लिंग भी महत्वपूर्ण नहीं, वहां समर्पण, और वो समर्पण हृदय का होता है, शरीर का नहीं। और ये सारे वर्ण जाति गोत्र ये प्रांत सारे मन के होते हैं कि आपके तन के होते हैं? आपका नाम किसका है? आप ब्राह्मण है तो आप तन से हैं कि आप मन से हैं? वस्तुतः नाम जब पढ़ा आपका तो नाम और ये सब तन के हैं ना, ये तो तन के हैं। इसलिए नारायण आपके यहां कहीं कोई भेद नहीं है। उच्च कोटि की माताएं हुई, उच्च कोटि के बालक हुए, उच्च कोटि के वृद्ध पुरुष हुए। और वो जैसे माई की बात सुना रहा था ना मैं, वो जना भाई नाम था, 16 साल की उम्र, पुराने जमाने में शादी होती थी, जल्दी शादी हो गई। उन्होंने सुनाया वो घटना, मुझे संक्षेप में सुना देता हूं, बड़ा प्रेरणास्पद उदाहरण है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उस माता को देख करके। अभी भी हैं, करीब वो 90 साल की हैं। उन्होंने सुनाया कि मुझे ऐसा लगा कि अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है। आज 90 साल की का मतलब समझते हैं ना, ये उसके जीवन की मतलब 70 साल पुरानी घटना है, 70 साल पुरानी घटना। और भयंकर जंगल था, गांव के पास एक पहाड़ी थी, पहाड़ी पर गई और बैठ गई, पहाड़ी में झरना था, वो 12 महीने बहते थे, पुराने जमाने में 12 महीने झरने बहते थे।